नारद जी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवर्षि नारद, जो महान व्रतधारी महात्मा सत्य प्रतिज्ञ विश्वविख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन सा लोक प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं देखना चाहता हूं। सत्य पर दृढ़ रहने वाले कुंती पुत्र महात्मा कर्ण कहां है, धृष्टद्युम्न कहां है, सात्यकी कहां है, तथा धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों को कहां स्थान मिला है, मुझे देखने की इच्छा है। इनके सिवा जो जो राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में शस्त्रों के द्वारा मारे गए, वे इस समय कहां हैं? उनका तो यहां दर्शन ही नहीं हो रहा है। राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, पांचाल, राजकुमार शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्र और दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूं। अब युधिष्ठिर ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, यहां युधामन्यु और उत्तम औजा ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते? जिन जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने सम्रांगनी में अपने शरीर की आहुति दी, वे मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं, वे सिंह के समान पराक्रमी वीर कहां गए हैं? अतः उन पुरुषों ने इस लोक पर क्या अधिकार कर लिया है? वो कौन से लोक को प्राप्त हुए? यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आए हो तो मैं उन महात्माओं के साथ यहीं रहूंगा, और यदि उनको यह शुभ और अक्षय लोक प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं अपने भाई बंधुओं के बिना यहां सुख से नहीं रह सकता हूं। युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था, उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा कर्ण को भी जलांजलि देना। माता की बात सुनकर मैं अवाक रह गया। मैंने पूछा, मां कर्ण को जलांजलि? कौन कर्ण? वही महारथी कर्ण, उसको जलांजलि मैं दूं? हां तुमको देना होगा। समझा नहीं मां? तब मां ने अपनी पूरी बात बताई और कहा कि महात्मा कर्ण तुम्हारे बड़े भाई हैं। तब से देवताओं, मुझे कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैं कर्ण के लिए दुखी नहीं हुआ। मैं बराबर यही शोक करता रहा, पश्चाताप करता रहा कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखता था, पर मैं क्यों नहीं उनका अनुगामी हो गया। जब कभी मेरी दृष्टि कर्ण के दोनों चरणों पर जाती तो मुझे कुंती के एक जैसे चरण दिखाई देते थे। मुझे क्या पता कि कर्ण कुंती का पुत्र है? यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। वे सूर्य पुत्र कर्ण, जिनके दर्शन के लिए मैं छटपटा रहा हूं, कहां है? किसी भी अवस्था में है, मैं दर्शन करने का इच्छुक हूं। अपने प्राणों से भी प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मपरायणा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूं। यहां रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं। ये मैं आप लोगों के सामने सच्ची बात बता रहा हूं। भला अपने भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से क्या लेना देना? जहां मेरे भाई वहीं मेरे लिए स्वर्ग। मैं इस लोक को स्वर्ग मान भी नहीं सकता हूं। देवताओं ने कहा, राजन, इतनी तुम्हारी इन लोगों में श्रद्धा है? इतना तुम कर्ण को चाहते हो, इतना तुम भाइयों में प्रेम रखते हो, तो चलो विलंब मत करो, हम लोग देवराज की आज्ञा से तुम्हारा हर काम, तुम्हारा हर प्रिय काम करना चाहते हैं। यूं कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी, देवदूत तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदों का दर्शन कराओ। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान को चले जहां पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन आदि थे। आगे आगे देवदूत जा रहा था, पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर, दोनों एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो बहुत खराब था, जहां पर चलना भी कठिन था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्ते से आ जा सकते थे। वहां सब और घोर अंधकार, चारों ओर बदबू आ रही थी, इधर उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई दे रहे थे, जहां तहां बाल और हड्डियां पड़ी थी, लोहे की चोंच वाले कौवे और गीद मंडराए हुए थे, सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले पर्वताकार प्रेत सब और घूम रहे थे। उन प्रेतों में से किसी के शरीर से मेद और खून बह रहा था, किसी के बाहु उरु पेट और हाथ पैर कटे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने देखा यहां खोलते हुए पानी में भरी हुई एक नदी बह रही है, जिस पानी के अंदर से बहुत ऊंची ऊंची दूरी तक भाप निकलती है, जिसको पार जाना बड़ा कठिन है। दूसरी ओर तीखे छुर्रों के से पत्तों से परिपूर्ण असिपत्र नामक वन है, जहां तलवारें ही तलवारों के समान तीखे पत्ते, कहीं गरम गरम बालू बिछी हुई है, तो कहीं तपे हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टाने रखी हैं। सब और लोहे के कलशों में तेल खोलाया जा रहा है। यत्र तत्र पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं, जिनको हाथ से छूना भी बड़ा कठिन है। उन सब के अलावा वहां पापियों को जो बड़ी बड़ी यातना दी जा रही थी, उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी। वहां की दुर्गंध से तंग आकर उन्होंने देवदूत से कहा, भाई देवदूत, ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी दूर और चलना पड़ेगा, तथा मेरे भ्राता कहाँ है? धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, बस यहीं तक आपको आना था। महाराज, देवताओं ने मुझे कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाए तो उन्हें वापस लौटा लाना, अतः अब मैं आपको लौटा ले चलता हूं। यदि आप थक गए हो तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे, इसलिए घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया, और वे ज्यों ही उस स्थान से मुंह फेर कर लौटने लगे, त्यों ही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की यह दयनीय पुकार सुनाई पड़ी, धर्मनंदन, आप हम लोगों पर दया करके थोड़ी देर यहां ठहर जाइए, आपके आते ही परम पवित्र और सुगंधित हवा चलने लगी, हमारी अग्नियां ठंडी होने लगी, इससे हमें बड़ा सुख मिला है। कुंती नंदन, थोड़ा और ठहर जाओ, आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है। हे धर्मराज, क्षण भर ठहर जाओ, आपके रहने से यहां की यातना हमें कष्ट नहीं पहुंचाती है, ठहर जाओ धर्मनंदन, हमारा निवेदन स्वीकार करो। इस प्रकार वहां कष्ट पाने वाले दुखी जीवों की भांति भांति दीन वाणी सुनकर युधिष्ठिर जी करुणा से डूब गए, बड़ी दया आई। और उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, ओह इन बेचारों को इतना कष्ट, खड़े रहे। देवदूत कहता है, धर्मराज चलिए ना। युधिष्ठिर जी ज्यों के त्यों खड़े हैं। फिर पूर्ववत दुखी जीवों का आर्तनाद सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान नहीं सके कि किनके वचन हैं, ये कौन बोल रहे हैं, मुझे कुंती नंदन कौन बोलता है, मुझे धर्मराज कौन बोलता है, मुझे युधिष्ठिर कौन पहचान रहा है, किनके वचन हो सकते हैं। खूब ध्यान देने पर भी उनका परिचय समझ में नहीं आया तो युधिष्ठिर ने उन दुखी जीवों को संबोधित करते हुए कहा, अरे कौन है आप लोग, कैसे मुझे पांडव समझ लिया, कुंती पुत्र समझ लिया, मेरा नाम जानते हो, क्या बात है, कौन है आप, यहां क्यों रहते हैं, क्या काम है आपका। उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी, धर्मराज कुंती नंदन युधिष्ठिर सुनो, मैं कर्ण हूं। दूसरी आवाज आती, मैं भीमसेन हूं। तीसरी आवाज आती, मैं अर्जुन हूं। चौथी आवाज, मैं नकुल हूं। पांचवी आवाज, मैं सहदेव हूं। छठी आवाज, मैं धृष्टद्युम्न हूं। और फिर एक आवाज आई स्त्री की, मैं द्रौपदी हूं। और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार अपने अपने नाम बताकर सब लोग घोर विलाप करने लगे। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज के मन में तरह तरह के विचार आने लगे, ये क्या है, देव का ये विधान, मेरे महात्मा भाई भीमसेन, मेरे बड़े भाई कर्ण, मेरे पुत्र द्रौपदी पुत्र वीर शूरवीर द्रौपदी के पुत्र स्वयं द्रौपदी, ऐसा कौन सा पाप किया, इतना घोर नरक मिला, इतने दुर्गंधपूर्ण भयानक स्थान में ये रह रहे हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, जहां तक मैं जानता हूं इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, और यदि किया भी होगा तो इस नरक जितना तो पाप नहीं किया है, फिर किस कर्म का ये फल है कि नरक में पड़े हुए हैं। मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता शूरवीर सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे, इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्परता दिखाई, बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत सी दक्षिणाएं दी, फिर भी इनकी दुर्गति, नहीं नहीं नहीं, कोई स्वप्न देख रहा हूं, नहीं स्वप्न नहीं देख रहा हूं, साक्षात देख रहा हूं, मुझे चेत है, स्वप्न में भी तो ऐसा लगता है कि साक्षात है। हे देवदूत क्या है, मेरे चित्त में कोई विकार आ गया, कोई संदेह और भ्रम की लहरें उठने लगी, क्या बात है, मैं स्वस्थ तो हूं ना, बोलो मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं ना। बहुत देर तक देवदूत ने कुछ नहीं कहा तो युधिष्ठिर ने देवदूत से फिर आगे कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहां नहीं चलूंगा, अपने मालिक को जाकर कह देना युधिष्ठिर नहीं आएगा, युधिष्ठिर वहीं रहेंगे, मेरे रहने से यहां मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है, मैं इनको छोड़कर नहीं आऊंगा, जाओ अपने स्वामी को बोल दो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वह देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था और जो भी करना चाहते थे वे सब देवराज इंद्र से निवेदन कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीता था कि इंद्रादि संपूर्ण देवता वहां पहुंच गए। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए आए। उन तेजस्वी देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार मिट गया। पापियों की यातना का वह दृश्य गायब हो गया। फिर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। इंद्र सहित मरुदगण बसु अश्विनी कुमार वासाद्य रुद्र आदित्य तथा अन्यान्य स्वर्गवासी देवता सिद्धों और महर्षियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास आकर एकत्रित हुए। उस समय इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहु अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, अब इससे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ आओ युधिष्ठिर, तुम्हारे बर्ताव से हम लोगों का तुमने दिल जीत लिया है। चलो हमारे साथ, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति भी हुई है। तुम्हें जो नरक देखना पड़ा इसके लिए क्रोध मत करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है उसे पीछे से नरक भोगना पड़ता है, और जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है वे पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है, तथा जो पुण्य अधिक और पाप कम करता है वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग में आनंद को भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखाया गया है। तुम्हारे पक्ष के जितने राजा युद्ध में मारे गए हैं वे सभी तो स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए विराजमान हैं। महान धनुर्धर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण भी, जिसके लिए तुम सदा दुखी रहते हो, बहुत उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे दूसरे भाई तथा पांडव पक्ष के अन्य राजा भी अपने अपने योग्य स्थान पर गए हैं। उन सबको चलकर देखो तथा अपनी मानसिक चिंता का त्याग करो, मेरे साथ स्वर्ग में विहार करो, अपने किए हुए पुण्यकर्म तप और दान के फल को प्राप्त करो। राजसूय यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धिशाली लोकों को स्वीकार करो युधिष्ठिर, और अपनी महान तपस्या का फल भोगो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोकों के भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर हो। तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोकों के भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर है। उन्हीं में तुम विचरण करोगे। तुम वहां राजर्षि मानधाता, राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत उन सब के निवास के साथ तुम निवास करोगे, और तुम्हें भी दिव्य सुख का उपभोग मिलेगा। महाराज, वह देखो, वो सामने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देव नदी मंदाकिनी सामने से दिखाई दे रही है। उनके पवित्र जल में स्नान करके तुम दिव्य लोक में जा सकोगे। वहां गोता लगाते ही तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन के शोक संताप ग्लानी बैर पक्षपात सब दोष मिट जाएंगे। देवराज की बात समाप्त होने पर शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा, बेटा तुम्हारी धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। यह मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई। किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता है। द्वैत वन में अरणि काष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी और उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सभी भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली, उसमें भी तुम्हें सफलता मिली। यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार तो तुमने हद कर दी। तुम अपने सुख की परवाह न कर भाइयों के हित के लिए नरक भी रहना स्वीकार करते थे। वाह, अतः तुम पूर्णतः शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नामो निशान नहीं, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं थे। तुमने जो उन्हें नरक भोगते हुए देखा, वह तो देवराज इंद्र के द्वारा प्रकट की हुई एक माया मात्र थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी, भला ये कोई नरक में जाने योग्य है? भरत श्रेष्ठ, आओ आओ मेरे साथ आओ और चलकर त्रिलोक गामिनी गंगा जी का दर्शन करो। जन्मेजय धर्म की ये बात सुनकर तुम्हारे पूर्व पितामह राजर्षि युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनिजन वंदित परम पावन देव नदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते ही उनका मानव शरीर दिव्य देह में बदल गया। उनके हृदय का शोक, संताप, बैर भाव सब समाप्त हो गया। तत्पश्चात वे देवताओं से घिरकर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस स्थान पर चले गए जहां उनके चारों भाई पांडव, कर्ण, धृतराष्ट्र के पुत्र आनंदपूर्वक निवास करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर देवताओं, ऋषियों, मर्दगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए युधिष्ठिर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कुरुश्रेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए हुए विराजमान हैं। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के समान है। वैसी आकृति, वैसा ही देखने का ढंग, वैसा ही मुस्कुराना और उनसे ही देखना, पहले की देखी हुई समानताओं के कारण वे अनायास ही पहचानने में आ रहे थे। उनके श्री विग्रह की दिव्य ज्योति अलौकिक छटा बिखेर रही थी। चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओं के से शरीर धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित थे। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए थे। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को 12 आदित्यों के समान तेजोमय रूप धारण किए विराजमान देखा। एक स्थान पर भीमसेन दिखाई पड़े जो पहले के ही समान शरीर धारण किए हुए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उनके चारों ओर मरुदगण दिखाई दिए और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कांति से देदीप्यमान था। उन्हें भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे हुए थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उद्दीप्त दिखाई पड़ते थे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है, साक्षात भगवती लक्ष्मी है और यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनि संभूता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई है। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही द्रुपद कुल में जन्म धारण कर तुम लोगों की सेवा की थी। इधर ये अग्नि के समान तेजस्वी पांच गंधर्व दिखाई दे रहे हैं जो तुम लोगों से उत्पन्न द्रौपदी के पांच पुत्र थे। इन परम बुद्धिमान गंधर्वराज धृतराष्ट्र का दर्शन करो, यही तुम्हारे बड़े पिता हैं। ये देखो तुम्हारे बड़े भाई कर्ण कैसे सूर्य के साथ चल रहे हैं, उनकी कांति कैसी है, कैसी उनकी प्रेम भरी तुम्हारे पर दृष्टि है। इस और वृष्णि, अंधक और भोजवंश के सात्यकी आदि महारथियों तथा महाबली वीरों को देखो, वे साध्यों, विश्वेदेवों और मरुदगणों में विराजमान हैं। जिसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था वह धनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, कितना सुंदर, सुडौल, कैसा दिव्य शरीर वाला, दृष्टि डालो, ये चंद्रमा के समान उन्हीं के कांति को धारण किए हुए हैं। और इधर देखो ये कुंती और माद्री के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडु विराजमान, ये विमान पर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। और शांतनु नंदन भीष्म वसुओं के साथ और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे हैं, दोनों के दर्शन करो। तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे राजा गंधर्व और यक्ष, ये सब बड़े पुण्यजन हैं। इन्हीं किन्हीं किन्हीं को गुह्यकों का भी लोक प्राप्त हुआ है। ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्म के अनुसार स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। जन्मेजी ने पूछा, ब्राह्मण, बड़ा सुंदर प्रसंग चला, मन को बड़ी शांति मिली। भीष्म, द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंख, उत्तर, धृष्टकेतु और शकुनी आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करने वाले अन्यान्य राजा स्वर्ग में कितने समय तक एक साथ रहे, वहां उन्हें सनातन स्थान की प्राप्ति हुई अथवा वे किसी और आगे गति को प्राप्त हुए, यह मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ये देवताओं का गूढ़ रहस्य है, तुमने पूछ लिया है इसलिए बताता हूं। जिनकी बुद्धि अगाध है, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले और सर्वज्ञ हैं, जो सब कर उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा था कि ये सभी वीर अंततो गत्वा अपने मूल स्वरूप में मिल गए थे। महातेजस्वी भीष्म वसुओं के रूप में प्रविष्ट हो गए, तभी आठ ही वसु उपलब्ध होते हैं, अन्यथा भीष्म जी को लेकर नौ वसु हो जाते हैं। आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया, कृतवर्मा वह मरुदगणों में मिल गया, प्रद्युम्न जैसे आए थे उसी प्रकार सनत कुमार के शरीर में प्रविष्ट हो गए, धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई, यशस्विनी गांधारी देवी उनके साथ ही गई, राजा पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ इंद्र भवन में चले गए। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, निषट, अक्रूर, सांब, भानु, कंप, विदुरथ, भूरिश्रवा, शल, भूरी, कंस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर और शंख ये विश्व देवों में जा मिल गए। चंद्रमा की महा तेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं। विधर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए। कुरुश्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में प्रवेश लिया, शकुनी ने द्वापर में और धृष्टद्युम्न ने अग्नि के रूप में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली यातुधान माने राक्षसों में मिल गए। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म का सायुज्य प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए, जो सनातन देवादिदेव नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर वे अपने मूल स्वरूप नारायण रूप में स्थित हो गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ी और अपना भौतिक शरीर त्याग कर अप्सराओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई। इस प्रकार मां भारत में मरे हुए वीर महारथी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कोई देवताओं में, कोई यक्षों में, कोई राक्षसों में मिल गए। कोई इंद्र के भवन में पहुंचा तो कोई कुबेर के भवन में, कोई वरुण लोक में गया और कोई कहीं गया। जन्मे जाए इस प्रकार मैंने तुम्हें कौरव और पांडवों का सारा चरित्र विस्तार पूर्वक सुना दिया है। सौती कहने लगे, द्विजवरों, महाराज जन्मेजय अपने यज्ञ में वैशंपायन के मुख से इस प्रकार महाभारत का इतिहास सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञ को भी समाप्त किया। सर्पों को संकट से छुड़ाकर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, तथा वे ब्राह्मण भी राजा से यथोचित सम्मान पाकर अपने अपने घर के लिए विदा हो गए। उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था उसको मैंने आप लोगों के समक्ष सुना दिया है। यह पुण्यमय इतिहास बड़ा पवित्र, उत्तम, सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, संत, इंद्रिय संयमी, शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले, सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेक शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि देखकर महात्मा पांडवों व अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की थी। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वह स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रकट होने के कारण यह उपाख्यान कार्ष्ण वेद के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो एकाग्र चित्त होकर इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है उसे ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा भी अंश सुना देता है उसका दिया हुआ अन्नपान अक्षय होकर पितरों को तृप्त करता है। मनुष्य अपने इंद्रियों तथा मन से दिन भर जो पाप करता है वह सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है, और रात्रि के समय उससे जो पाप होता है उनसे प्रातःकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत है। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एवं 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेदव्यास की सिंह गर्जना सुनो। वो कहते हैं 18 और 6 अंगों सहित चारों वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, यह अकेला उन सब के बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है उसे श्री कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही दूसरी जगह है, जो जिसमें नहीं कहा गया वो कहीं नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय को तथा गर्भिणी स्त्री को इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है, युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र व सौभाग्यशालिनी कन्या को प्राप्त होती है। नित्य मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने धर्म की कामना से इस महाभारत की रचना की। पहले उन्होंने 60,00,000 श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी, उसमें से 30,00,000 श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हो गया, 15,00,000 की दूसरी संहिता पितृलोक में चली गई, क्या बात है, 14,00,000 श्लोकों की तीसरी संहिता यक्षलोक में चली गई, बड़ा आदर हुआ, तथा 1,00,000 श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित रही। देवताओं को देवर्षि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को सुखदेव जी ने तथा मनुष्यों को वैशंपायन जी ने पहले पहले महाभारत संहिता सुनाई थी। शौनक जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद के समानता रखने वाले इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करता है वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों को और उत्तम कीर्ति को पाने योग्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता है या सुनाता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य मिलता है और उस पुण्य के प्रभाव से उसको उत्तम सिद्धि मिलती है। जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं। सुखदेव जी बोलते हैं, मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों सैकड़ों स्त्री पुत्रों के साथ संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और कराते रहेंगे। माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे, पहला श्लोक। दूसरा, हर्ष स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम्। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष, ये सही है, हर्ष स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम्, ये सही है। ऊर्ध्वबाहुर्विरुम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्माधर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं, यह मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उनका सेवन जाने क्यों नहीं करते हैं। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु नित्यो धर्म सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्यो हेतु रस्य त्वनित्य है। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है, इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य है। यह महाभारत का सारभूत उपदेश। इमाम भारत सावित्रीम प्रातरुत्थाय यह पठेत स भारत फलम प्राप्य परम ब्रह्मादि गच्छति। यह महाभारत का सारभूत उपदेश। भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वो संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेशमय रत्नों का भंडार कहलाता है। जो मनुष्य कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनाता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्र चित्त होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है वो मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्यावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की जय आनंद कंद भगवान की जय जय। कल पाठ करेंगे। महाभारत का विष्णु सहस्र नाम है, गीता जी में भी उसका पाठ करेंगे शाम को।